हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 8, 9 एंड 10। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यद्वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात हूणा द्रपुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभा यवनाख सादया, येने च पापा यदपाश्रयाश्रया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृन्दावनम् रम्याकाचिदुपासन व्रजवधु, वर्गेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं, प्रेम पुमर्थो श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्राधरो नापर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवदीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधार, श्रीवासरी गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं कुरुतु वाचालम्, पंगुं लंघयति किरं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारम्, परमानन्दमाधवम्, श्रीचैतन्यईश्वरम्। ग्रंथा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद, पहला अध्याय, श्लोक संख्या 8, 9 और 10। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा कि परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा, प्रश्न हमें सदैव याद रखना चाहिए क्योंकि पूरा श्रीमद् भागवतम जो है वो इसी प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न क्या पूछा उन्होंने 1.19.37 में, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। आप मुझे संसिद्धि परफेक्शन के विषय में बताइए, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप समस्त योगियों के गुरु हो, बताइए कि एक व्यक्ति को जीवन भर क्या करना चाहिए, पुरुष का सब समय क्या कर्तव्य है, और म्रियमाणस्य सर्वथा, और खास तौर पर स्पेशल जो मृत्यु के निकट हो उसको क्या करना चाहिए, उसको पूरा जीवन क्या करना चाहिए। यश्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भी प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूही यत्वा विपर्य। बता दीजिए साफ साफ कि उसे पूरा जीवन क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इंद्रियों के द्वारा क्या कार्य करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, और उसके विपरीत जो कुछ है वो सब भी बताइए। तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने पहले तो विपरीत बताया कि आज का इस कलयुग का जीव जो है वो बिल्कुल विपरीत कर रहा है, जो उसको करना चाहिए वो तो कर ही नहीं रहा है, बल्कि क्या कर रहा है सारा टाइम। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यता मात्म तत्व गृहेषु गृहमेरिणाम। जो अपने संबंध को भगवान के साथ निर्माण नहीं कर सके, जो आत्म तत्व को नहीं देख सकते हैं, जो केवल अपने शरीर को ही प्रसन्न करने के लिए गृहेषु गृहमेदिषु घर गृहस्थी में आ सकते हैं, उनके लिए तो सुनने योग्य बोलने योग्य हजारों टॉपिक हैं। और वो क्या करते हैं अपने पूरे जीवन में, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब वरणेण। निद्र रात को या तो पूरी रात सोते रहते हैं या व्यभिचार करते रहते हैं, स्त्री संग में समय खराब कर देते हैं, और दिन के वक्त क्या करते हैं गधों की तरह काम करते हैं कि किस तरह से अपने परिवार को खुश करूं, किस तरह से अपने परिवार को कुटुंब भरणेण। तो उतना बताने के बाद उन्होंने ये बताया कि वो लोग क्या करते, पश्यन अपि न पश्यति, वो इतने प्रमत्त हो जाते हैं कि वो देख कर भी ये समझ नहीं पाते कि क्षण भंगुर जीवन है तो हमें उसको, इस मनुष्य जीवन का लाभ लेना चाहिए, इसको इसका सदुपयोग करना चाहिए, देखते नहीं है। लेकिन फिर वापस श्लोक नंबर 5 में उन्होंने रियल प्रश्न का उत्तर दिया, सीधा बताया एकदम क्लियर शब्दों में, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्ति तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भय, जो वास्तव में भय से छूटना चाहते हैं, जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ क्या करना चाहिए, भगवान हरि के विषय में श्रवण करना चाहिए, भगवान हरि का कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं को स्मरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वात्मा है, सबके प्रिय है, वो भगवान है, वही पूजनीय है, वो ईश्वर है, वही कंट्रोलर है, और उन्हीं का, उन्हीं के विषय में श्रवण करना चाहिए, उन्हीं के विषय में सुनना चाहिए, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए, यही पूरी जीवन करते रहना चाहिए। और उसके बाद बताया, समझो ऋषि पूछ रहे हैं कि बाकी जो भगवत प्राप्ति के बाकी जो रूल्स हैं, बाकी जो चीजें हैं, उनका क्या, जैसे सांख्य योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, उनके विषय में बताइए। तब बताया, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मम परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। चाहे सांख्य योग करो, ध्यान योग करो, या अपना स्वधर्म का पालन करो, लाभ क्या है, उसका कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए, क्या उसके द्वारा आपकी मति में कृष्ण स्थिर हो रहे हैं, क्या आपका प्रेम कृष्ण के प्रति उत्पन्न हो रहा है, क्या भगवान की स्मृति हो रही है। अगर इन सब कार्यों के द्वारा भगवान की स्मृति हो रही है तब तो ठीक है, लेकिन देखा गया है कि केवल भक्ति के द्वारा ही हम कृष्ण को अच्छे तरीके से स्मरण कर पाते हैं। और भक्ति का सीधा अर्थ लेना चाहिए क्या, श्रवण और कीर्तन, क्योंकि डायरेक्ट से लिंक लगता है ना कृष्ण के साथ। फिर भी बोला कि जन्म लाभ पर पुंसम अंत नारायण स्मृति, तो अगर आप वास्तव में अपने जीवन की सिद्धि चाहते हो तो उसका मतलब है क्षण क्षण में हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। और इस सिद्धांत को दृष्टांत देते हुए, इसके विषय में, इसको, इस तथ्य को स्थापित करते हुए उन्होंने बताया कि केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधता नैर्गुणीय स्थारमन्ते स्म गुणानु कथने हरि। जो आध्यात्मवादी हैं, जो विधि निषेधों और प्रतिबंधों से बहुत ऊपर उठे हुए हैं, वो एक ही कार्य करते हैं, क्या, गुणानु कथने हरि, भगवान हरि के गुणों का कथन करते हैं। केवल श्रवण और कीर्तन ही में अपना पूरा जीवन गुजारते, बाकी सारी ये जो भगवत प्राप्ति के अलग अलग बताए गए हैं, ज्ञान का, वो ज्ञान योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, ये सब को नहीं करते, बस क्या करते, गुणानु कथने। और हम देखें भी तो बस यही करते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने क्या किया, क्या कोई योग साधना की, क्या अष्टांग योग किया, क्या सांख्य, केवल जिधर भी जाते थे भगवान की कथाओं को बताते, रात रात तक बैठकर श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट करते थे। इसका मतलब ये है कि भगवान की गुणानु कथने, ये भगवान के जो लीला है उनका कथन करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, वो कह के गए, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, मेरी आज्ञा से तुम गुरु बनो और कृष्ण का उपदेश करो, कृष्ण की लीलाओं को बताओ, कृष्ण की कथाओं को बताओ। तो वास्तविक जो एक व्यक्ति का कार्य है वो क्या है, सीधा बता दिया कि भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान की कथाओं का गुणगान करना, ये कार्य है, उसको यही करना है। जीवा से भगवान का नाम लेना है, कानों से भगवान की कथा को श्रवण करना है, और कोई कार्य नहीं। जब इतना सुना परीक्षित महाराज ने, तब परीक्षित महाराज बिल्कुल रोमांचित होते, क्योंकि वो चाहते यही थे, उनकी इच्छा यही थी। उन्होंने पहले ही कहा था सारे ऋषियों को कि मुझे भगवान की कथा श्रवण करनी है, आप कथा सुनाइए, मुझे इच्छा है भगवान की कथा श्रवण करने की। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यही कथा श्रवण करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तब परीक्षित महाराज बोलते हैं कि हे भगवान, आप तो बिल्कुल नई बात बोल रहे हो, ऐसा तो इतना क्लियर किसी भी और ऋषि ने अभी हमको नहीं बताया, तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो आप बता रहे हो इतना क्लियर, बिल्कुल क्लियर बता दिया कि एक, मतलब ये तो पूरा अर्थ है ना, कि बस भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, भगवान की कथाओं का गुणानु कथने हरि, उनकी कथाओं का गुणगान करना है। तो परीक्षित महाराज बोल रहे, ऐसा पहले के ऋषियों ने क्यों नहीं बताया, आप तो इतना क्लियर क्लियर बता रहे हो। तो आप ये पहले के ऋषि मुझे क्यों नहीं बता रहे थे इस तरह कि ये ही करना है आपको। तब वे कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने नहीं किया था। कि उन्होंने जो प्रश्न किया कि एक व्यक्ति का जीवन में क्या कर्तव्य है, पुरुषस्येह यत् कारम म्रियमाणस्य सर्वथा, कि मृत्यु के निकट जो व्यक्ति आ जाए और जीवन भर उसका क्या कर्तव्य, हर कोई अपने 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 लाभ के लिए प्रश्न करता है कि मुझे क्या ये चीज प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है, ये चीज प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है, जीवन में पूरे जीवन में मैं वो क्या करूं जिससे मुझे सिद्धि प्राप्त हो, इस तरह का प्रश्न ही नहीं किया। अगर प्रश्न किया है तो भी सही उत्तर जिस शास्त्र में है वो शास्त्र उनको पता ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने दूसरे ऋषियों ने इतना क्लियर वो आंसर दिया नहीं है। तो बोला फिर आप ना मुझे क्या किससे उत्तर दे रहे हो, कौन सा क्या प्रमाण है जो आप मुझे ये बता रहे हो कि भगवान की कथाओं को श्रवण करना ही जीव मात्र का एक कार्य है जिससे वो सिद्धि कर प्राप्त करेंगे, तो वो कैसे बता रहे हो आप, मतलब उसका क्या प्रमाण है, किस पुराण की बात कर रहे हो। तब कहते हैं वो श्लोक नंबर 8 में, मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, इदं भागवतं प्राणाम पुराणं ब्रह्म सम्मितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म सम्मितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर् द्वैपायनादहम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म सम्मितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इदं भागवतं नाम पुराणम, इस ये जो भागवतम नाम का जो पुराण है उसी में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर है। तो आपके प्रश्नों का उत्तर इसमें है इसलिए, और ये कौन सा ग्रंथ है, पुराणम ब्रह्म सम्मितम। ब्रह्म सम्मितम मतलब सारे वेदों के सार रूप में, यानी वेद में जिसको ब्रह्म कहा गया है वो भगवान के स्वरूप का स्वरूप को सार रूप में क्लियर जो बताएगा वो सिर्फ श्रीमद् भागवतम महापुराण है। और ये भागवतम महापुराण अभी तक किसी ऋषि ने पढ़ा नहीं है, अभी तक वो किसी को बताया नहीं गया, अभी नया नया पब्लिश्ड हुआ है, नया नया प्रकाशित हुआ है। तो मानो कि परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं अगर अभी तक किसी ने नहीं सुना ये भागवतम तो फिर आपको कैसे पता चला उसके बारे में, आपने कैसे पढ़ा ये भागवतम ग्रंथ। तब वे कहते हैं अधीतवान द्वापर आदव, द्वापुर के आदव यानी जब द्वापुर का अंत हो रहा था, जब वेदव्यास जी और शुकदेव जी का जन्म हुआ था, तो जब कलयुग का आरंभ होने वाला था उस समय में, कलयुग के आरंभ से पहले द्वापुर के एकदम अंत से पहले, ये जो एकदम बॉर्डर लाइन थी ना, तो इसको बोलते हैं द्वापर आदव यानी कि द्वापर युग के अंत में। अधीतवान, अधीतवान मतलब अधिकार पूर्वक ग्रहण करना, मैंने ये ग्रहण किया। हम जो अध्ययन करते ना खुद से, अगर गुरु महाराज की आज्ञा नहीं होती है, जैसे हमें गुरु महाराज की आज्ञा है कि आपको पहले भगवद गीता पढ़नी चाहिए उसके बाद भागवतम पढ़ना चाहिए, फिर शुद्ध भक्तों के द्वारा जब हम पढ़ते हैं उसको कहा जाता है अध्ययन। लेकिन जब हम खुद से उसको रीड कर रहे होते हैं उससे क्या है वो, उसको हम पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोल रहे नहीं, अधीतवान द्वापरादो पितृ द्वैपायनादहम, ये मैंने खुद से मतलब मेरे गुरु महाराज पितृ जो मेरे पिताजी भी हैं, द्वैपायन यानी वेद व्यास जी, उन्होंने स्वयं मुझे अधिकार पूर्वक इस ग्रंथ को पढ़ाया है और मैंने ये द्वापुर के अंत में इस ग्रंथ को पढ़ा है। और ये क्या है, पुराणम ब्रह्म समितम, ये साक्षात्कार कराता है उस भगवान को। बाकी जितने भी शास्त्र हैं वो भगवान के स्वरूप को इतना क्लियर बताते नहीं है, भगवान के लीलाओं को इतना क्लियर किसी भी शास्त्र में आज तक बताया नहीं गया, इसलिए आज तक कोई ऋषि ने इतना क्लियर आंसर नहीं दिया। अब मैंने क्योंकि पढ़ा है तो मुझे पता है कि एक व्यक्ति का जन्म लाभ परे पुंसम अंते नारायण स्मृति, कि आपके जीवन की सफलता क्या है कि आपको भगवान की स्मृति हो, और स्मृति आपको भगवान की तब तब होगी जब आप भगवान से प्रेम करोगे, और भगवान से प्रेम आप कब करोगे, जब आप भगवान की लीलाओं को नित्य श्रवण करोगे। कंटिन्यूस जब हम भगवान की लीलाओं को शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण करते हैं तो हृदय के अंदर की मलिनता, भौतिक आसक्ति, देहात्म बुद्धि का ये जो अज्ञान है वो सब समाप्त हो जाता है, और मति जो है वो कृष्ण के अंदर स्थिर हो जाती है, तभी हम भगवान को हर क्षण हर समय याद कर सकते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर इसी भागवतम में है, इसलिए मैंने आपको ये भागवतम महापुराण से ही बताया है। अनुवाद देखिए, द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता श्रील द्वैपायन वेद व्यास जी से श्रीमद् भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुरूपक अनुपूर्वक ग्रंथ का अध्ययन किया जो समस्त वेदों की तुल्य है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस कथन की पुष्टि उनके ही निजी उदाहरण के द्वारा होती है कि सर्वोच्च आध्यात्मवादी जो विधि विधानों की परिधि से परे होता है, मुख्य रूप से वही भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन का आश्रय लेता है। अभी जैसे उन्होंने पिछले श्लोक में क्या कहा, नैर्गुणीय स्थारमन तेस्म गुणानुकत, जो नैर्गुणीय होते हैं, जो ये तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, जो भौतिक प्रतिबंधों से ऊपर उठ जाते हैं, उनका एक ही कार्य होता है क्या, कि वो भगवान के गुणों का कथन करते हैं, उसी में रमनते हैं, उसी में उनको आनंद आता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इनसे बड़ा सुखदेव गोस्वामी से बड़ा नैर्गुणीय कौन होगा, आत्मवादी कौन होगा, जिन्होंने पैदा होते ही अपना सब कुछ त्याग दिया, फिर भी वो अगर किसी चीज में रमते हैं, आनंद लेते हैं, तो भगवान की कथाओं को श्रवण करने में। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अपने कथन का उन्होंने स्वयं अपने उदाहरण, उनके उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि जो विधि विधानों की परिधियों से ऊपर उठ जाता है, मुख्य रूप से वही भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन का आश्रय लेता है। जो भौतिक आसक्ति में लिप्त जीव होता है ना, उसको नहीं अच्छा लगता, वो बोलेगा ये वाली तो कथा मैंने पहले से सुनी है, ये इसमें आनंद नहीं, वो स्टोरी की तरह लेगा। लेकिन जो आध्यात्मिकवादी होगा ना, वो डूब जाएगा उस कथा के अंदर, अपने आप को उसी कथा का कोई पात्र समझेगा। जब कृष्ण गैयों को चराने जाएंगे ना, तो उनको ऐसा लगेगा कि जिस पत्थर पर या जिस जर्रे पर कृष्ण का चरण रखा है, वहीं पर एक जर्रा कहीं मैं भी होगा शायद। तो अपने आप को उस कृष्ण की लीला का एक निगरणीय पात्र समझकर वो उस कथा को श्रवण करता है। सखियों के साथ भगवान रास कर रहे होते हैं, और उस रास मंडल में जो वृक्ष हैं, उनके ऊपर जो कोई परिंदे बैठे हुए हैं, जो पक्षी बैठे हुए हैं, उनमें से एक पक्षी या उन वृक्षों की एक डाली खुद को, मतलब ऐसा लगेगा कि वही आनंद में अनुभव कर रहा हूँ। भगवान की कथाओं को जब हम पीते, ये पीने की चीज है, ये सुनने की थोड़ी चीज है, पहले ही बोला उन्होंने पीवत भागवतम रसमाल, जो पिएगा तो उसको आनंद आएगा, सुनने की चीज नहीं है ये। तो ये बताया, आगे बता रहे हैं कि सर्वात्मन सर्वमान्य मुक्तात्मा तथा सर्वोच्च आध्यात्मवादी होने के कारण सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित के अंतिम 7 दिनों की उस सभा में उपस्थित समस्त सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई थी। वे खुद अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि वे स्वयं भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकर्षित हुए थे और उन्होंने अपने महान पिता श्री द्वैपायन व्यास देव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया था। श्रीमद् भागवतम या ऐसे ही किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य का अध्ययन अपनी बुद्धि के बल पर घर पर नहीं किया जाता। यद्यपि शरीर रचना या शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध रहते हैं, किंतु इन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई योग्य चिकित्सक नहीं बन सकता। उसकी चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश ले करके विद्वान प्राध्यापकों के पथ प्रदर्शन में पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो भगवत विज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है, उसे श्री वेद व्यास जैसे सिद्ध पुरुषों के चरणों में बैठकर ही सीखा जा सकता है। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, किंतु उन्हें भी अपने महान पिता व्यासदेव जी से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना पड़ा, जिन्होंने इसका संकलन एक अन्य महात्मा श्री नारद मुनि के उपदेश पर किया था। यहाँ श्री प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के पढ़ने की विधि बता रहे हैं कि एक भौतिक जो चिकित्सा है, एक डॉक्टर जब बनना होता है तो भले ही डॉक्टर की सारी किताबें जिससे डॉक्टर पढ़ाते हैं या डॉक्टरी सीखी जाती है वो मार्केट में मिलती है, लेकिन ऐसा थोड़े होगा कि आप मार्केट से डॉक्टरी की MBBS की सारी बुक्स लेकर आओ, घर पे पढ़ जाओ और बोलो कि अभी मैं डॉक्टर बन गया हूँ। ऐसा नहीं होगा। आपको किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की अंडर इंस्ट्रक्शन रहकर आपको वो शास्त्र को पढ़ना होगा और उसके जो वो जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन देगा उसके अनुसार आपको सीखना पड़ेगा उसके अंडर में रहकर। उसी के बाद आप संसार के रोगों को खत्म करने का, संसार के रोगों का इलाज कर सकते हो। ये तो भौतिक रोग हैं, उसके लिए भी आपको किसी माहिर डॉक्टर, किसी एक्सपर्ट के अंडर में रहकर सीखना होता है। लेकिन ये तो भवरोग है जो कि इस भौतिक जगत से के जो बहुत बड़ा रोग है, जो अज्ञानता, जो देहात्म बुद्धि, जो भौतिक गंदगी हृदय में भरी हुई है, हृदय को सर्जरी करके उसको निकालनी, तो ये हमसे खुद से नहीं होने वाला। किसी शुद्ध भक्त के अंडर में रहकर जब हम इस शास्त्र को सुनेंगे, जैसे अभी हम श्री प्रभुपाद जी की शब्दों को सुन रहे हैं, तात्पर्य को सुन, अगर खाली हम इन श्लोकों को समझने का प्रयास भी करें तो भी हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह से अगर किसी शुद्ध भक्त के अंडर में रहकर श्रवण किया जाता है तो हम इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते, सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैरागी थे, जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद से श्रीमद् भागवतम को नहीं पढ़ा बल्कि अपने पिताजी वेद व्यास जी जिन्होंने इसको संकलन किया था उनसे श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। और श्री वेद व्यास जी ने स्वयं से नहीं बल्कि नारद मुनि के आदेशानुसार इसकी रचना की थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक विद्वान ब्राह्मण को व्यक्ति भागवत से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के लिए उपदेश दिया। श्रीमद् भागवतम परम पुरुष के दिव्य नाम रूप गुणों लीलाओं पार्षद तथा विविधताओं पर आधारित है और भगवान के अवतार श्रील वेद व्यास जी द्वारा इसका प्रवचन हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, भागवत पढ़िए भागवत स्थाना। जो भागवत होगा, जो भगवान का शुद्ध भक्त होगा, वही आपको भागवतम के रियल नेक्टर, असली जो उसका स्वाद है, रस है, जो उसका अमृत है, वो आपको पिला सकेगा। तो यहाँ क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान के रूप गुण लीलाओं पार्षदों उन सब चीजों का संकलन है, तो इसमें उस पे ही भगवान के अवतार श्री वेद व्यास जी द्वारा इसका प्रवचन हुआ है। क्योंकि भगवान की लीलाएं उनके शुद्ध भक्तों के संग में संपन्न होती हैं, फलतः इस महान ग्रंथ में उन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है जिनका संबंध कृष्ण से है। यह ब्रह्म सम्मितम कहलाती है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण का वाणी रूप प्रतिनिधि है। जिस तरह की श्रीमद् भगवत गीता भगवान का वाणी अवतार है क्योंकि इसका प्रवचन भगवान के द्वारा हुआ,
और श्रीमद् भागवतम भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन भगवान ही के अवतार द्वारा भगवान के कार्यकलापों के विषय में हुआ, जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया। यह वैदिक कल्प वृक्ष का सार है और ब्रह्म विषय पर सर्वोच्च शोध ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। वेद व्यास जी द्वारा द्वापर युग के अंत में सत्यवती के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे, अतएव इस प्रसंग में द्वापर आदव का अर्थ होगा। कली के प्रारंभ से ठीक पहले, जैसे यहाँ पर बताया गया ना, द्वापर आद अधितवान द्वापर आदव, तो इसका श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कलयुग के पहले प्रारंभ होने से ठीक पहले शिला जीव गोस्वामी के अनुसार इस कथन का तर्क वृक्ष के ऊपरी भाग को उसका शुभारंभ कहने का की भांति है। यद्यपि वृक्ष का आदि शुभारंभ उसका मूल है, लेकिन सामान्य जन को वृक्ष का ऊपरी हिस्सा ही पहले दिखता है। इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया जाता है। तो यहाँ पर ये श्रील प्रभुपाद जी क्यों बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर बताया ना द्वापर आदव, तो आदव का मतलब वैसे पहले होता है, यानी द्वापर के शुरू में, आदव माना शुरुआत। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी मिसाल दे रहे हैं कि जैसे एक वृक्ष खड़ा होता है तो ऊपर का हिस्सा पहले दिखता है, हम बोलते हैं वो सबसे ऊपर देखो, है ना, तो ऊपर वाला नीचे वाला हिस्से को, हालांकि वो शुरू में वो होता है, मूल होता है, लेकिन हमको दिखाते किसे हैं कि वो ऊपर वाला हिस्सा। तो यहाँ पर इसका ऐसे बता रहे हैं कि द्वापर आदव यानी द्वापर के अंत में इसको ऐसे बताया गया है। तो परीक्षित महाराज ने जब सुना कि सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि मेरे पिताजी से मैंने द्वापर के अंत में ये ग्रंथ को श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण किया था, जो कि ब्रह्म सम्मितम है, जिसमें भगवान के ब्रह्म को पूरी तरह से सार रूप में क्लियर बताया गया है, वो मैंने सुना था। इसी में ये बताया गया है कि एक मनुष्य के जीवन का एक ही कर्तव्य है कि भगवान की कथाओं को श्रवण करना। इतना सुनने के बाद मानो परीक्षित महाराज एक क्वेश्चन करते हैं, वे पूछते हैं कि आप तो प्रकृति से पार निर्गुण स्थिति में थे, माया को पार कर गए थे, तो इतना बड़ा विशद ग्रंथ आपको क्यों पढ़, मतलब आपने क्यों पढ़ा इतना बड़ा, 18,000 श्लोक हैं इस भागवतम, आपको क्या जरूरत थी इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने की। जैसे अभी हम लोग भी देखते ना, कोई यहाँ पर हम लोगों ने देखा बहुत कि कोई भक्ति में थोड़ा आगे निकल जाएगा और हम खुद ही उसको बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि खुद ही उसको लोग बोल रहे हैं। अब आपको ये सारे शास्त्र सुनने की जरूरत नहीं है, आपको अभी इतनी बड़ी कथाएं अटेंड करने की जरूरत नहीं, कोई अगर नहीं भी आएगा ना तो हमको कैसे लगेगा, हाँ भाई इसको क्या जरूरत है, ये तो सारा दिन भक्ति में लगा रहता है, है ना, ये तो सारा दिन भक्ति में लगा रहता है, इसको शास्त्र सुनने की या कथा श्रवण करने की क्या जरूरत है, इसका मन तो भगवान में, कथा श्रवण करने का उद्देश्य क्या है, भगवान में मन लगे, इसका मन तो भगवान में लगा हुआ है, इसको भगवान की कथा श्रवण करने की क्या जरूरत है, ऐसा लगता है। तो परीक्षित महाराज यही पूछ रहे हैं, आपका मन तो भगवान में लगा हुआ था, फिर आपने इस विशद ग्रंथ को पढ़ने का कष्ट क्यों उठाया, आपने क्यों उठाया। यहाँ पर तो लोग को जब अब बोलते हैं कि भाई आपका मन तो भगवान में लग गया, अभी वो खुद ही बोलेगा हाँ अब मुझे कथा सुनने की जरूरत नहीं है, अब कथा में रुचि नहीं है। लेकिन देखते हैं सुखदेव गोस्वामी जो कि जन्म से ही ब्रह्म स्थिति पे है, जन्म जब वो उनका जन्म हुआ था ना, वास्तव में इनका जन्म हुआ ही भागवतम श्रवण करने के लिए था। क्या हुआ था कि जब नारद मुनि के आदेश अनुसार वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना कर दी, रचना करने के बाद वो किसी पात्र को ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको मैं श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करवाऊं। उनके और भी बहुत सारे शिष्य थे, जैसे जैमिनी ऋषि, वैशंपायन, और भी बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उनमें से वो किसी को योग्य नहीं समझते थे, क्योंकि वो सब को किसी की कर्म कांड में रुचि थी, किसी की अलग अलग विषयों में रुचि थी, लेकिन जब कर्म कांड ज्ञान कांड सबसे जीव निवृत्त हो जाएगा भगवान के अंदर, भगवान ब्रह्म में जब स्थित हो जाएगा ना, तब निर्गुणी हो जाएगा, तीन गुणों से आगे निकल जाएगा, फिर ही वो इस योग्य बनेगा कि वो भागवतम को श्रवण करने के पात्र बने। तो उन्होंने देखा कि मेरा कोई भी शिष्य इस स्थिति तक अभी नहीं पहुंचा है कि उसे श्रीमद् भागवतम पढ़ाया जाए, तो फिर उनको बहुत दुख हो रहा था कि मैं इतनी मेहनत से इतना बड़ा ग्रंथ की रचना की है, अभी कोई योग्य शिष्य नहीं है तो मैं किसको पढ़ाऊं। तो फिर उन्होंने भगवान की बहुत बहुत आराधना की, बहुत समय तक तपस्या की उन्होंने, उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की और भगवान ने उनसे जब वर मांगने को कहा तब उन्होंने कहा मुझे एक पुत्र चाहिए। बोला पुत्र? फिर बोला नहीं, मुझे पात्र चाहिए, ऐसा पात्र हो जिसके अंदर मैं श्रीमद् भागवतम महापुराण को रख सकूं, श्रीमद् भागवतम महापुराण का जिसको अध्ययन करा सकूं, कोई ब्रह्म में स्थिर एक शुद्ध आत्मा हो जो कि श्रीमद् भागवतम महापुराण को ग्रहण कर सके। तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि अवश्य आपके यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी का जन्म होगा, आप उनको श्रीमद् भागवतम महापुराण का अध्ययन कराना। तो उनकी तपस्या के फलस्वरूप सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में स्थापित हुए। वो तो मैंने आपको बताया था कि वो वही शुक जिन्होंने पार्वती महारानी और शिव जी की वार्ता को सुन लिया था, वही शुक जो कि भगवान श्रीमती राधा रानी के तोते थे, वही तोते जब शिवजी उनको क्योंकि उन्होंने अमर कथा को श्रवण कर लिया था इसलिए उनको मारने के लिए जब पीछे आ रहे थे, तो वही शुक जो है वो वेद व्यास जी के गर्भ के अंदर स्थापित हो गए थे। लेकिन वो आए इसलिए थे क्योंकि भगवान ये चाहते थे कि श्रीमद् भागवतम महापुराण इस भौतिक जगत में प्रकाशित हो। परंतु जैसे ही वो गर्भ में स्थापित हुए तो वो निकलना ही नहीं चाह रहे थे, उन्होंने बाहर आने से बिल्कुल इनकार कर दिया। साधारणतया एक व्यक्ति जो होता है, एक मनुष्य का जो संतान होता है, एक साल तक गर्भ में रहती है। अब उनको 12 साल गुजर गए, 12 साल तक वो अपनी माता के गर्भ से बाहर नहीं निकलते थे, वो निकलना चाहते ही नहीं थे। और उन्होंने उनके पिताजी उनसे बात करते थे, वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं और वो बात करते थे अपने पिताजी को, अपने पुत्र को बोलते थे देखो बेटा बहुत समय हो गया है, आपकी माता को बहुत कष्ट होता है, आप बहुत बड़े हो गए हो, अब आप बाहर आओ। लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यदि आप मुझसे मैं आपको ये आप यदि मुझसे ये आश्वासन लेकर देते हो, किससे, यदि साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर मुझे ये आश्वासन देते हैं कि बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे आकर्षित नहीं करेगी, तब मैं आऊंगा, वरना मैं बाहर नहीं आऊंगा। तभी वेद व्यास जी फिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए, क्योंकि ये उसी समय की बात है जब कृष्ण भगवान यहाँ पर थे। तो भगवान श्री कृष्ण को वेद व्यास जी ने बहुत प्रार्थना की कि मेरा पुत्र सुखदेव गोस्वामी जो कि अंदर है माता के गर्भ पे है, तो वो निकल नहीं रहा है, आप आइए उनको आश्वासन दीजिए, उनको आप ना बाहर निकलने, क्योंकि मेरी पत्नी को बहुत कष्ट हो रहा है, ये पुत्र मैंने आपसे इसलिए मांगा कि मैं इसको शास्त्र का श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करा सकूं। फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं और गर्भ में उसको सुखदेव गोस्वामी को ये आश्वासन देते हैं कि शुभ तुम बाहर आ जाओ, बाहर आओगे तब भी मेरी माया तुम पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगी, कभी भी तुम्हें आकर्षित नहीं करेगी, तुम बाहर आ जाओ। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इतना आश्वासन दिया उसके बाद तो वो माता के गर्भ से निकले, परंतु माता के गर्भ से बाहर आने के बाद माता पिता की ओर देखा तक नहीं। ये कैसा पुत्र है, पैदा हुआ और अपनी जैसे ही नाल काटी तो अपनी नाल को गले में लिपट के निकल गए वहां से कि मुझे किसी भी भौतिक वस्तु से कोई आकर्षण नहीं करना है। वो जब इस तरह से निकल गए तब वेद व्यास जी को इतना दुख हो रहा था, उनके दुख की कोई परी सीमा नहीं कि इतने समय के इंतजार करने के बाद, इतना समय प्रतीक्षा करने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद भी संतान उत्पन्न हुई और वो भी छोड़ के चली गई, वो इतना वो आगे आगे जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उपनयन संस्कार नहीं कराया, अब कोई जनेऊ संस्कार नहीं कराया, कोई संस्कार किया ही नहीं, वो निकले निकल गए। तभी वो पीछे पीछे भाग रहे हैं वेद व्यास जी उसके, बोलते हैं हे पुत्र आप हमें छोड़कर मत जाओ, बड़ी कठिनाइयों से मैंने आपको भागवतम का अध्ययन कराने के लिए भगवान से मांगा है, आप ऐसे कैसे चले जाते हो। सुखदेव गोस्वामी ने एक नहीं सुनी और चले गए जंगल में। जंगल में चले गए क्योंकि उनको किसी भी भौतिक वस्तु से कोई आकर्षण नहीं था। तो यही बात पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज, जब आपके अंदर कोई आकर्षण था ही नहीं तो आपने भागवतम क्यों सुना। फिर क्या हुआ, वेद व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को, जो छोटे शिष्य थे, उनको श्रीमद् भागवतम महापुराण के कुछ श्लोकास, जैसे 15-20 श्लोकास रटा दिए, सिखा दिए, और सिखाने के बाद उनको यह आदेश दिया कि आप जाइए वन में, स्पेशली जिनको उनको पता था कि भाई सुखदेव गोस्वामी यहाँ यहाँ पर विचरण करते हैं, तो उस वन में जाकर आप इन श्लोकों को जोर जोर से दोहराइए, बार बार इन श्लोकों का उच्चारण कीजिए कि सुखदेव गोस्वामी के कान में ये श्लोक आ जाए। तो दो श्लोक ऐसे थे जो सुखदेव गोस्वामी ने उन बालकों के द्वारा सुने। उसमें महाराज सुखदेव गोस्वामी ध्यान मग्न थे, ब्रह्मचिंतन में लीन थे, लेकिन उन बालकों ने दो श्लोक गाए। पहला एक श्लोक वे कहते हैं, अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघांस्ययापा ययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। यह श्लोक उद्धव जी विदुर जी को सुनाते हैं। वे भगवान की करुणा का, भगवान की प्रेम का भक्तों के प्रति या किसी भी जीव के प्रति भगवान की जो सुहृदता है उसके विषय में बताते हैं कि जीव चाहे किसी भी भाव से भगवान की शरण में जाता है, चाहे वो किसी भी भाव से कृष्ण का उससे संपर्क होता है, कृष्ण उसका कल्याण कर देते हैं। बकी पूतना को कहा जाता है क्योंकि पूतना जो है वो बकासुर की बहन थी, उसको बकी कहा जाता था। और पूतना क्या कर रही है, विष लगाकर, कालकूट विष लगाकर स्तन पे भगवान कृष्ण का वध करने के लिए आए थे। स्तन कालकूटम, और ऐसे वध करने वाली, ऐसी कठोर हृदय की जो पूतना, जो कि मृत्यु का कारण बनना चाहती थी, लेकिन कृष्ण ने उसका कोई भी अपराध नहीं देखा। कृष्ण कितनी करुणामयी है कि इस वध करने की इच्छा से आई हुई पूतना राक्षसी को भी माता की गति देकर अपने धाम में स्थान दिया। ते ये उद्धव जी रो रो के विदुर जी के कहते हैं कि लेबी गतिम दात्री ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। आखिर इतना या इनसे बड़ा कोई और दयालु होगा जिसकी हमें शरण लेनी चाहिए। शरण लेने योग्य यदि कोई है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण ही है। और दूसरा श्लोक वो कह रहे हैं, वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 21 का श्लोक नंबर 5 है। उसमें बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के विषय में। बरहा पीड़म नटवर वपु करणयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजंत्यम शमालयम रंध्रान वेणो अदर सुदया पुरयन गोपवृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्तिम। इसमें इसे बताया गया है, बरहा पीड़म नटमरो, यानी मोर पंख, बरहा पीड़म मोर पंख लगाकर उनका सिर अलंकृत है। अपने सिर पर मोर पंख आभूषण धारण करके, अपने कानों में नीले कर्णिकार फूल, स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र तथा वैजंतीम च मालम, वैजंती माला धारण किए भगवान श्री कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य स्वरूप प्रदर्शित करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश करके अपने पद चिन्हों से इसे रमणीक बना दिया। अधर सुधया पूरा उनकी जो बांसुरी है, उन्होंने अपने होंठों के अमृत से अपनी बांसुरी की छिद्रों को भर दिया और ग्वाल बाल उनके यश का गान कर रहे हैं। ग्वाल बाल गा रहे हैं, बजा रहे हैं और भगवान उनके शब्दों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, थिरकते हुए जा रहे हैं। क्या उनकी शोभा है, क्या उनकी सुंदरता है, उनका एक एक अंग जो है वो जीव को मुग्ध कर देने वाला है, मदन को मोहित करने वाली सुंदरता को लेकर भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जा रहे हैं। तो इतना जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना उन बालकों के द्वारा, तब वो अपनी ब्रह्म समाधि का चिंतन छोड़ दिया उन्होंने। ब्रह्म समाधि में इससे ही सिद्ध होता है कि ब्रह्म निराकार ब्रह्म की जो समाधि होती है, उनका जो चिंतन होता है, उसमें इतना आनंद नहीं होता है जितना भगवान की कथा में। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वहां पर वन में बैठकर ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, बस ये दो श्लोकों की ओर आकर्षित हो गए और आगे गिड़गिड़ाने लगे उन भक्तों, उन बच्चों के सामने, बोला और सुनाओ और सुनाओ, इतनी मधुर इतनी सुंदर श्लोक तुमको किसने पढ़ाए, कहाँ से सीखा, और आते हैं इससे ऐसे आपको कितने श्लोक आते हैं, और भी सुनाओ, मुझे और भी सुनना है। तड़पने लगे, सिर्फ ये दो श्लोक उन्होंने सुने और उनकी समाधि टूट गई। फिर वो बहुत ज्यादा उनको अनुनय विनय करने लगे। तब वो बालक कहने लगे, हमको तो सिर्फ दो तीन श्लोक ही आते हैं और इनको सुनकर आप इस तरह से विचलित हो रहे हो, ऐसे मर रहे हो। हमारे गुरु महाराज ने ऐसे 18,000 श्लोकों की रचना की है। 18,000 श्लोक, सुखदेव गोस्वामी को रोमांच होने लगा कि ये इतनी आनंददायक श्लोक मुझे भी सुनने हैं, मुझे भी सीखने हैं, कि आप मुझे अपने गुरु महाराज के पास लेके चलोगे, आपके गुरु महाराज का नाम बताओ, क्या नाम है आपके गुरु महाराज का। तब वो बालक बताते हैं कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हमारे गुरु महाराज हैं। सुखदेव गोस्वामी को रोमांच होने लगा कि ये तो मेरे पिताजी हैं और मेरे पिताजी ने हम मुझे इस वन में आते वक्त बोला था कि मैं तुम्हें भागवतम पढ़ाऊंगा, अब मैं स्वयं जाऊंगा अपने पिताजी से भागवतम को ग्रहण करने के लिए, और फिर मैं इस तरह से अपने पिताजी के पास से वापस गया और उन्होंने मुझे सिखाया। वे कहते हैं यहाँ पर श्लोक नंबर 9 में, मेरे साथ उच्चारण कीजिए, परिनिष्ठितो पिनायर गुणिया उत्तम श्लोक लीलाया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यददीतवान्। परिनिष्ठितो पिनायर गुणिया उत्तम श्लोक लीलाया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यददीतवान्। परिनिष्ठितो पिनर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलाया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यददीतवान्। परिनिष्ठितोपि, पूर्णतः अनुभूति प्राप्त किया था, हे महाराज आप सही कह रहे हैं, मैं इसमें कोई संदेह नहीं है, परिनिष्ठितो मैं तीनों गुणों से पार हो गया था, मन पूरा का पूरा ब्रह्म में लगा हुआ था। हम सबका मन भगवान में नहीं लगा हुआ, हम सबका मन तो भौतिक वस्तुओं में लगा हुआ, लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी की जो स्थिति थी ना उस समय, वो एकदम ब्रह्म में लीन थे, लेकिन उनको फिर भी वे कहते हैं परिनिष्ठितो पी नैर गुणिया, अभी तीनों गुणों से ऊपर हो गया था, आध्यात्मिक में स्थित हो गया था, परंतु उत्तम श्लोक लीलाया, उत्तम श्लोक यानी भगवान श्री कृष्ण के जब इन इन लीलाओं का गान गुणगान श्रवण किया तो फिर क्या हुआ, गृहीत चेता, भगवान की लीलाओं ने मेरे चित्त को जबरदस्ती खींच लिया, गृहीत आकर्षित कर लिया, इसलिए मैंने अध्ययन किया। मतलब ब्रह्म सुख के प्लेटफॉर्म में वो आनंद नहीं आ रहा था मुझे जितना भगवान की लीलाओं को श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। गृहीत चेतना चेता आख्यानम यदि आख्यानम, फिर मैं उस शब्दों को उन बातों को श्रवण करने के लिए आकर्षित हो गया, यदि तवान, इसलिए मैंने इस ग्रंथ को अध्ययन किया। अनुवाद देखिए, हे राजर्षि, मैं आध्यात्म में दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकर्षित हुआ जिनका वर्णन प्रबुद्ध उत्तम श्लोकों द्वारा हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा रूप में की जाती है, किंतु यदि भगवत कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवतम के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है तो वह भगवान का दिव्य भक्त बन जाता है। अल्प ज्ञान के कारण हम परम सत्य का व्यक्तित्व होने के सिद्धांत समझ नहीं सकते एवं भगवान के व्यक्तिगत कार्यकलापों के प्रति अल्पज्ञ निर्विशेषवादी खेद व्यक्त करते हैं, किंतु विवेक बुद्धि एवं तर्कों के साथ साथ परम सत्य तक पहुंचने की दिव्य विधि कटर से कटर निर्विशेषवादी को भी भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति आकर्षित होने में सहायक बन सकती है। शुकदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति किसी सांसारिक कार्य के प्रति आकर्षित नहीं हो सकते, किंतु जब वे ऐसे भक्त को श्रेष्ठ विधि द्वारा आश्वस्त कर दिया जाता है तब वे अवश्य ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकर्षित होते हैं। भगवान दिव्य हैं और उसी तरह से उनके कार्यकलाप भी दिव्य हैं। वे ना तो निष्क्रिय हैं ना ही निर्विशेष। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भगवान के विषय में बता रहे हैं कि भगवान को समझने की तीन तरीके हैं, कि भगवान की तीन फेज हैं। स्टार्ट में भले हम भगवान के दिव्य स्वरूप को ना समझें, निर्विशेष को जो लोग समझते हैं वो भगवान के दिव्य स्वरूप को अभी तक ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे जब वो प्रगति करते हैं तब भगवान के परमात्मा स्वरूप को, और उसके बाद यदि उनके ऊपर भगवत कृपा हो जाती है, यदि उनकी उनके प्रयास को उनकी साधना को किसी तरह से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, किसी शुद्ध भक्त का आश्रय उनको प्राप्त हो जाता है, श्रीमद् भागवतम के श्रेष्ठ कथनों से का यदि उनको श्रवण प्राप्त हो जाता है तो वो भगवान को समझ सकते हैं, भगवान के कार्यों को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के स्वरूप को, भगवान के समस्त गुणों को, भगवान के स्वरूप को, भगवान के सौंदर्य को वो समझ सकते हैं। ये बहुत ही हाईएस्ट स्टेज है कि कृष्ण को समझा जाए, कृष्ण को भगवान स्वरूप में स्वीकार किया जाए। ये बहुत ही कठिन है क्योंकि हमारा जो वजूद है ना, हमारा जो ये भौतिक शरीर है, इसके कारण भौतिक सोच ही आती है, बहुत ही भौतिकता में हम घिरे हुए हैं। न जाने कितने जन्मों से शरीर बोध है, देहात्म बुद्धि है, इसके कारण हमें ये बात समझ में, मतलब साधारण व्यक्ति ये बात समझ ही नहीं सकता कि कैसे कृष्ण अपने एक व्यक्ति आता है और वो भगवान कैसे हो सकता है, जो छोटा सा होता है, बच्चों के साथ खेलता है, चोरी करता है, ये भगवान कैसे हो सकता है। मतलब वो भगवान के कार्यकलापों की दिव्यता को कोई इतनी सहजता से ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए वो गलती करता है। लेकिन जब उसको किसी शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, फिर ही भगवान कहते हैं 7.28 में, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणा ते द्वन्द मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढवित्, जिसके पूरे पुराने जन्मों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इस जन्म में जिसने कोई अपराध नहीं किया वही मेरी दिव्य लीलाओं को समझ सकता है और मेरी शरण में आता है। भजन तेमाम दृढ़विता, वही मेरी दृढ़ता के साथ मेरा भजन करता है। तो ये भगवान की बड़ी अनुकंपा है कि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, भगवान की लीलाओं को श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। ये कृष्ण की ये किसी हमारे प्रयास का ये हमारे साधन का हमारे प्रयास का रिजल्ट नहीं हो सकता। ये हमारा प्रयास क्या इतना शुद्ध हो सकता है जिसके द्वारा श्री प्रभुपाद जी के द्वारा हम श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्लोक को समझ सकते हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, श्रवण करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा है हमारे ऊपर। ये भगवान की अहितु की कृपा है, किसी बस ये अहितु की कृपा है। कोई कारण हमारा कोई साधन इतना शुद्ध हो नहीं सकता। बस भगवान ने कर दी कृपा के सुन लो, मेरे विषय में श्रवण करो और मुझसे प्रेम करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यूं ही साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।